ये आकाशवाणी है। अब आप विशाल शर्मा से संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले लोकसभा, लेखक हैं यूनिवार्ता के वरिष्ठ पत्रकार मोहम्मद आजाद। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज लोकसभा में कहा कि अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए आयात शुल्क टैरिफ के प्रभावों का आकलन किया जा रहा है तथा राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित करने और आगे बढ़ाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। मोदी सरकार किसानों, श्रमिकों, उद्यमियों, निर्यातकों, एमएसएमई तथा उद्योग जगत के सभी हितधारकों की रक्षा और संवर्धन को सर्वोच्च महत्व देती है। श्री गोयल ने सदन में दिए वक्तव्य में अमेरिका के साथ बातचीत के बारे में जानकारी दी और कहा कि दोनों पक्षों के बीच दिल्ली और वाशिंगटन में आमने सामने की 4 बैठकें हुई तथा कई बार डिजिटल माध्यम से बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि हालिया घटनाक्रम के प्रभावों का आकलन किया जा रहा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय सभी हितधारकों से संवाद कर उनके आकलन की जानकारी ले रहा है। श्री गोयल ने कहा कि सरकार हमारे किसानों, श्रमिकों, उद्यमियों, निर्यातकों, एमएसएमई और उद्योग जगत के सभी हितधारकों की रक्षा और संवर्धन को सर्वोच्च महत्व देती है। हम अपने राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित करने और आगे बढ़ाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएंगे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि एक दशक से भी कम समय में 5 कमजोर अर्थव्यवस्थाओं से निकलकर भारत प्रमुख अर्थव्यवस्था बन गया है तथा दुनिया की 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में एक है। उनका कहना था कि ये भी अपेक्षित है कि भारत कुछ ही वर्षों में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। श्री गोयल ने कहा कि यूएई, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया के साथ व्यापार समझौते किए गए हैं। हम दूसरे देशों के साथ इसी तरह के समझौतों के लिए प्रतिबद्ध हैं। बिहार में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया वापस लेने और इस पर चर्चा कराने की मांग को लेकर विपक्षी दलों के सदस्यों ने लोकसभा में जोरदार हंगामा किया, जिसके कारण प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं चल सका। 2 बार के स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही अपराह्न 4 बजे जैसे ही शुरू हुई। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमरीका की ओर से लगाए गए आयात शुल्क पर सरकार के रुख को लेकर सदन में अपना बयान दिया। जब श्री गोयल का बयान समाप्त हुआ तो अध्यक्ष ओम बिरला ने शून्यकाल की घोषणा की, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया और आसन के समीप पहुंच गए। श्री बिरला ने हंगामा कर रहे सदस्यों को अपनी सीट पर जाने और शून्यकाल चलने देने का अनुरोध किया। अध्यक्ष की बातों का विपक्षी सदस्यों पर कोई असर नहीं हुआ और वे SIR पर चर्चा कराने की मांग को लेकर नारेबाजी करते रहे। अध्यक्ष ने हंगामा थमता नहीं देख सदन की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी। इससे पहले पूर्वाह्न 11 बजे सदन की कार्यवाही आरंभ होने पर अध्यक्ष ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और अमरीकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के बीच साझेदारी के तहत बुधवार को GSLV रॉकेट से निसार उपग्रह को कक्षा में स्थापित किए जाने के बारे में सदन को सूचित किया। सदस्यों ने मेजें थपथपाकर इस उपलब्धि की सराहना की। श्री बिरला ने सदन को यह सूचित भी किया कि रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी के सांसद NK प्रेमचंद्रन को सभापति तालिका के सदस्य के रूप में नामित किया गया है। इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष बिरला ने जैसे ही प्रश्नकाल शुरू कराया, विपक्षी दलों के सदस्य SIR वापस लो के नारे लगाने लगे। अध्यक्ष ने हंगामा कर रहे सदस्यों के तख्तियां दिखाने और नारेबाजी करने पर निराशा व्यक्त की और कहा कि नियोजित तरीके से प्रश्नकाल और शून्यकाल को बाधित करना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि लोगों ने सदन में तख्तियां लाने के लिए नहीं भेजा है और जनता इसे देख रही है। हंगामा नहीं थमने पर उन्होंने सदन की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। कार्यवाही 2 बजे पुनः शुरू होने पर पीठासीन सभापति अवधेश प्रसाद ने आवश्यक कागजात सदन के पटल पर प्रस्तुत कराए। इस दौरान विपक्ष के सदस्य आसन के समीप आकर SIR के मुद्दे पर शोर शराबा करने लगे। श्री प्रसाद ने हंगामा कर रहे सदस्यों से अपने स्थान पर जाने और कार्यवाही चलने देने का आग्रह किया। अपनी अपील का कोई असर होता नहीं देख उन्होंने करीब 5 मिनट बाद ही कार्यवाही अपराह्न 4 बजे तक स्थगित कर दी। नागर विमानन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में कहा कि नागर विमानन महानिदेशालय के पास विमानों के सुरक्षित परिचालन और अनुरक्षण के लिए व्यापक और संरचित नागर विमानन विनियमन है। इन विनियमनों को निरंतर अद्यतन किया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाया जाता है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2015 से अब तक भारतीय नागरिक पंजीकृत अनुसूचित विमानों से संबंधित कुल 18 दुर्घटनाएं दर्ज की गई हैं। हवाई दुर्घटना के कारण यात्री की मृत्यु या शारीरिक चोट लगने की स्थिति में यात्री या उसके निकटतम संबंधी को मुआवजे का भुगतान वायु परिवहन अधिनियम 1972 के प्रावधानों द्वारा अधिशासित होता है। भारत ने 2009 में वायु परिवहन अधिनियम 1972 में संशोधन करके मॉन्ट्रियल कन्वेंशन 199 का अनुसमर्थन किया है, जो अन्य बातों के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय परिवहन के दौरान किसी व्यक्ति की मृत्यु, क्षति या हानि की स्थिति में मुआवजे के लिए वाहकों की देनदारी का प्रावधान करता है। उन्होंने कहा कि डीजीसीए के पास एक मजबूत सुरक्षा निगरानी तंत्र है, जिसमें विनियमों और नागर विमानन अपेक्षाओं CAR के अनुपालन के अनुवीक्षण के लिए निगरानी, स्पॉट चेक्स और संपरीक्षा शामिल है। केंद्रीय जलशक्ति राज्य मंत्री ने राजभूषण चौधरी के एक सवाल के जवाब में कहा कि बाढ़ प्रबंधन और कटाव रोधी योजनाएं संबंधित राज्य सरकारों द्वारा उनकी प्राथमिकता के अनुसार तैयार और कार्यान्वित की जाती हैं। केंद्र सरकार गंभीर क्षेत्रों में बाढ़ प्रबंधन के लिए तकनीकी मार्गदर्शन और प्रोत्साहनात्मक वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्य के प्रयासों में सहायता करती है। उन्होंने कहा कि बाढ़ प्रबंधन के संरचनात्मक उपायों को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार ने बाढ़ नियंत्रण, कटावरोधी, जल निकासी विकास, समुद्री कटावरोधी आदि से संबंधित कार्यों के लिए राज्यों को केंद्रीय सहायता प्रदान करने हेतु 10वीं और 11वीं योजना के दौरान बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम लागू किया गया था, जो बाद में 2017-18 से 2020-21 की अवधि और 2021-22 से 2025-26 के दौरान बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम के एक घटक के रूप में जारी है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन जयराम गडकरी ने एक लिखित जवाब में कहा कि विगत 5 वर्षों के दौरान कर्नाटक राज्य में 836 किलोमीटर लंबाई के कुल 8 राज्य सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में घोषित किया गया है। वर्तमान में कर्नाटक राज्य में विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्ग पर 93 कार्य चल रहे हैं और ये कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में है। केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री शोभा करंदलाजी ने लिखित जवाब में कहा कि औद्योगिक क्षेत्र के विकास की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। केंद्र सरकार पंजाब सहित देशभर में MSME के संवर्धन और विकास के लिए विभिन्न स्कीमों, कार्यक्रमों और नीतिगत पहलों के माध्यम से राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता करती है। एमएसएमई क्षेत्र प्राइवेट प्लेयर का क्षेत्र है और इस क्षेत्र में उद्यमियों द्वारा स्वयं निवेश किया जाता है। अब सुनिए राज्यसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं पीटीआई भाषा की मनीषा श्रीवास्तव। राज्यसभा में आज हंगामे की वजह से सदन में आज भी शून्यकाल और प्रश्नकाल नहीं हो पाया। सुबह 11 बजे बैठक शुरू होने पर उपसभापति हरिवंश ने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए। इसके बाद उपसभापति ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और अमरीकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के बीच साझेदारी के तहत बुधवार को GSLV रॉकेट से निसार उपग्रह को कक्षा में स्थापित किए जाने का जिक्र किया। उपसभापति ने इसरो से संबद्ध वैज्ञानिकों, अधिकारियों और अन्य सभी लोगों तथा नासा की समन्वय टीम को अपनी सदन की ओर पूरे देश की ओर से बधाई दी। इसके बाद हरिवंश ने सदस्यों ने शून्यकाल तथा प्रश्नकाल चलने देने का अनुरोध करते हुए कहा कि मौजूदा मानसून सत्र में 120 प्रश्न, 120 शून्यकाल उल्लेख और इतनी ही संख्या में विशेष उल्लेख लिए जाने थे, लेकिन केवल 11 प्रश्न, 3 शून्यकाल उल्लेख और 17 विशेष उल्लेख ही लिए जा सके हैं। उन्होंने कहा कि कुल 30 घंटे और 6 मिनट का समय बर्बाद हुआ। ये समय सदस्यों का था, सरकारी कामकाज का नहीं। इसके बाद उन्होंने सदन द्वारा 1 सितंबर 1997 को भारतीय स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती के अवसर पर पारित एक प्रस्ताव पढ़ा। सर्वसम्मति से पारित इस प्रस्ताव में कहा गया था कि संसद की प्रतिष्ठा को संरक्षित और संवर्धित किया जाना चाहिए, साथ ही सदनों की प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों तथा पीठासीन अधिकारियों के सुव्यवस्थित कार्य संचालन से संबंधित निर्देशों का सचेत और गरिमापूर्ण अनुपालन किया जाना चाहिए। हरिवंश ने प्रस्ताव पढ़ते हुए कहा कि विशेष रूप से प्रश्नकाल को बनाए रखते हुए हंगामा या नारेबाजी करने से परहेज किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें ये आत्मावलोकन करना होगा कि हमने जो संकल्प लिया था, क्या उस संकल्प को हम पूरा कर पा रहे हैं। उन्होंने बताया कि उन्हें 28 नोटिस नियम 267 के तहत मिले हैं, जिनमें बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण सहित और अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए 25% कर और जुर्माने के दुष्प्रभाव तथा उपराष्ट्रपति पद से जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे सहित कई मुद्दों पर नियत कामकाज स्थगित कर तत्काल चर्चा कराए जाने की मांग की गई है। उपसभापति ने कहा कि ये नोटिस आसन द्वारा पूर्व में दी गई व्यवस्था के अनुरूप नहीं है, इसलिए इन्हें स्वीकार नहीं किया जा सकता। नोटिस स्वीकार किए जाने पर विपक्षी सदस्यों ने विरोध जताया और हंगामा करने लगे। द्रमुक के तिरुचि शिवा ने आसन की अनुमति मिलने के बाद कहा कि ये सही है कि सदन का समय बर्बाद हुआ है, लेकिन सदन चलाना केवल विपक्ष की ही नहीं बल्कि सत्ता पक्ष की भी जिम्मेदारी है। उन्होंने SIR के मुद्दे को अहम बताते हुए कहा कि इस मुद्दे पर चर्चा के लिए दिन और समय तय कर दिया जाए। इस पर हरिवंश ने कहा कि ये सत्ता पक्ष और विपक्ष बैठकर तय करें। कांग्रेस के प्रमोद तिवारी ने कहा कि नियम 267 के तहत जो नोटिस दिए गए वे सभी विपक्षी दलों की ओर से दिए गए हैं और विपक्ष की ही बात सुनी नहीं जा रही है। बीजू जनता दल के सस्मित पात्रा ने कहा कि ओडिशा में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ निरंतर अपराध हो रहे हैं। माकपा के जॉन ब्रिटॉस ने कहा कि देश में चुनाव लगातार होते रहते हैं और इस बार होना नई बात नहीं है, लेकिन इस बार बिहार चुनाव से पहले SIR की कवायद हो रही है। हरिवंश ने उन्हें आगे बोलने की अनुमति नहीं दी और शून्यकाल के तहत नियत मुद्दा उठाने के लिए द्रमुक के पी विल्सन का नाम पुकारा। विल्सन अपनी बात रखने के लिए खड़े हुए, लेकिन विपक्षी सदस्यों का हंगामा तेज हो गया। उन्होंने सदस्यों से अपील की कि वे सदन को सुचारू रूप से चलने दें, लेकिन हंगामा जारी रहने के कारण उन्होंने 11:15 पर बैठक को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। दोपहर 12 बजे सदन की कार्यवाही पुनः शुरू होते ही विपक्षी दलों के सदस्यों ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के मुद्दे पर चर्चा की अपनी मांग दोहराई और हंगामा करने लगे। पीठासीन अध्यक्ष घनश्याम तिवाड़ी ने सदस्यों से शांत रहने और प्रश्नकाल चलने देने की अपील की। तिवाड़ी ने हंगामा कर रहे सदस्यों से सदन की गरिमा बनाए रखने और प्रश्नकाल चलने देने का आग्रह किया। इसी दौरान सदन के नेता JP नड्डा ने कहा कि बुधवार को सदन में जब गृहमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर पर हुई चर्चा का जवाब देना शुरू किया तो कुछ विपक्षी दलों के सदस्य सदन से बहिर्गमन कर गए। उन्होंने दिसंबर 2008 में मुंबई में हुए आतंकवादी हमले के बाद दोनों सदनों की कार्यवाही की ओर सदस्यों का ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री ने लोकसभा में आतंकवाद पर हुई बहस का जवाब दिया था और तत्कालीन गृहमंत्री ने राज्यसभा में चर्चा का जवाब दिया था। नड्डा ने कहा कि उन्होंने कार्य मंत्रणा समिति की बैठक के दौरान ही यह स्पष्ट कर दिया था कि यह तय करना सरकार का विशेष अधिकार है कि उसकी ओर से कौन बोलेगा। उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों ने ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा और जानकारी दिए जाने की मांग की थी, लेकिन जब अवसर आया तो विपक्षी दलों के सदस्य सदन से बहिर्गमन कर गए। दो बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे जब उच्च सदन की बैठक पुनः शुरू हुई तो नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आसन की अनुमति से अपनी बात रखते हुए कहा कि यहां सवाल इस बात का नहीं है कि चर्चा का जवाब कौन देगा, बल्कि हमारा विरोध गृहमंत्री अमित शाह की इस बात से था कि मैं अकेला सबसे निपट लूंगा। कांग्रेस नेता ने कहा कि शाह की इस टिप्पणी के खिलाफ विपक्ष के सदस्यों ने कल अपनी बात रखी थी। इसके बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि कल विपक्षी सदस्य सदन में इसी बात को लेकर नारेबाजी कर रहे थे कि प्रधानमंत्री चर्चा का जवाब देने के लिए क्यों नहीं आए। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में पूरे मंत्रिमंडल की सामूहिक जिम्मेदारी होती है और चर्चा का जवाब कौन देगा यह सरकार तय करती है, कोई अन्य तय नहीं कर सकता। इसके बाद जब विपक्षी सदस्य हंगामा करने लगे तब पीठासीन अध्यक्ष सस्मित पात्रा ने बैठक को शाम 4:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। 3 बार के स्थगन के बाद जब अपराह्न 4:30 बजे बैठक शुरू हुई तब भी विपक्ष का हंगामा जारी था। हंगामे के बीच ही वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत से आयातित वस्तुओं पर 25% अतिरिक्त आयात शुल्क और जुर्माना लगाने की घोषणा से भारत पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर सदन में बयान दिया। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री जब ये बयान दे रहे थे तब सदन में विपक्षी सदस्य बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR सहित विभिन्न मुद्दों पर हंगामा कर रहे थे। उनका बयान समाप्त होने के बाद विपक्ष के कई सदस्य स्पष्टीकरण की मांग करने लगे। उपसभापति हरिवंश ने सदन के नियमों का हवाला देते हुए इसकी अनुमति नहीं दी। इस बीच विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा और उपसभापति ने अपराह्न 4:45 पर बैठक दिनभर के लिए स्थगित कर दी। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।